તારીખ 2/6/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
પત્ર 254 ચાલવા કરું. પત્ર કી શરૂઆત હમને થોડા संक्षेप में कल का स्वाध्याय का सार लेने वो है कि जीव अनेक प्रकार के दोष से परिणमन कर रहा है. दोष की विचित्रता भी बहुत है. परंतु सबसे बड़ा दोष है वो मिटाना चाहिए. और वो सबसे बड़ा दोष जो है वो यह है कि इस जीव ने मैंने हमारे जीव ने सच्ची मुमुक्षुता कभी प्रकट नहीं की. कभी सच्ची मुमुक्षुता में आया नहीं. सच्ची मुमुक्षुता की भूमिका में अगर आता है तो अन्य चित्र विचित्र जो भी दोष है वो सब मिटाना आसान हो जाता है. ऐसा नहीं है कि अपने धर्म मत यानी संप्रदाय के अनुसार प्रवृत्ति करे धर्म की इसलिए मुमुक्षुता आ जाती है, वो बात नहीं है. जैसे हम लोगों शास्त्र स्वाध्याय ज़्यादा करते हैं तो मुमुक्षुता आ गई वो बात नहीं है. ज़्यादा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं इसलिए मुमुक्षुता हो गई वो बात नहीं है. अपने को दूसरे के प्रवृत्ति का कोई चर्चा नहीं करना है. हम लोग जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें शास्त्र स्वाध्याय की प्रवृत्ति अधिक करते हैं, सत्संग करते हैं तो इसलिए मुमुक्षुता हो गई ऐसी बात नहीं है. मुमुक्षुता का प्रारंभ किस प्रकार से होता है इस विषय में इस महात्मा ने बहुत अनुभवपूर्ण गंभीर और महत्व की बात कही है. बात का महत्व भी बहुत है, इसकी गंभीरता भी बहुत है और इसके पीछे स्वयं का अनुभव रहा है. अपने अनुभव से वो बात लिखी है कि जीव को महाशक्ति के परिणाम हुआ करते हैं. दर्शन वो होने से कहीं न कहीं महाशक्ति के परिणाम होते हैं. पंचेंद्रिय के विषय हैं, किसी को खाने में, किसी को सुनने में, किसी को देखने में. तो उनको वहाँ परिभ्रमण अपना देख करके कल दृष्टांत लिया था सांप का, अजगर का. जैसे वो देखते ही घबराहट होती है ऐसे अपने महाशक्ति के परिणाम को देख करके या अनुभव करके जिसको अपना ये संसार का परिभ्रमण और परिभ्रमण के दुख नजर आते हैं उसको इस दुख से छूटने का भाव आए बिना नहीं रहेगा. संसार दुख से छूटने का भाव आएगा तभी मुमुक्षुता का प्रारंभ होगा, क्योंकि इसके पहले सच्ची उदासीनता भी नहीं आती। सांसारिक कार्यों में, उदय प्रसंग में या किसी भी पदार्थ में उदासीनता जो आनी चाहिए वो उदासीनता नहीं आती। परिभ्रमण के दुख के कारण से जो उदासीनता आती है वही सच्ची उदासीनता है, यथार्थ उदासीनता है। संसार के अनेक प्रकार के प्रतिकूल प्रसंग हैं जो हम नहीं चाहते, ऐसे अनेक प्रकार के प्रतिकूल प्रसंग है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा प्रतिकूल प्रसंग है? ये परिभ्रमण। जितने भी प्रतिकूल प्रसंग है वो नहीं आए उसको हम मिटा दें, ये हमारी एक समस्या है। सभी प्रकार की समस्याओं को हम विचारें तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? ये जो जन्म मरण हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है, और ये ज्ञानी का मार्ग कहो या तीर्थंकर देव का मार्ग कहो, ये इसके लिए है, इसी समस्या के लिए है। लौकिक में तो प्रतिकूलता की समस्या का समाधान अनुकूलता लाना उतना ही है। सामान्य तौर से यही सोचा जाता है कि प्रतिकूलता मिट जाए और अनुकूलता हो जाए तो हम सुखी है, बीमारी के जगह तंदुरुस्ती आ जाए, निर्धनता के जगह सधनता आ जाए, और जो भी जिसकी जितनी भी प्रतिकूलता है वो पाप के उदय से होती है तो बदल करके पुण्य का उदय हो जाए तो बात खत्म। लेकिन जन्म मरण के लिए क्या सोचोगे? वो तो सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। पर इसका एक ही समाधान है कि हम मुक्त हो जाएं। इस परिभ्रमण के चक्कर से हम मुक्त हो गए, यही इसका समाधान है। अगर ये समाधान मिल गया इस बड़ी समस्या का तो सभी अनुकूलता प्रतिकूलता की पर कोई प्रसंग भी आने वाला नहीं है, बात सभी खत्म होगी। तो एक काम करने से दूसरा हजार काम हो जाता है, यानी एक गोली खाने से हजार रोग मिटता है, तो अलग अलग रोग की अलग अलग गोली क्यों खाएंगे? तो ज्ञानियों ने इस बात को सोची, प्रबुद्ध पुरुष थे वो, उसने बहुत दीर्घ दृष्टि से, बहुत अनुभव से इस बात को सोची, उसका संशोधन किया, रिसर्च किया और अनुभव पूर्वक की बात को समाज के सामने रखी है। जहाँ तक ये चिन्ह, ये लक्षण शुरू नहीं होगा कि हमको हमारे महाशक्ति के परिणाम में परिभ्रमण का दुख नजर नहीं आएगा, तब तक एक मोक्ष के विषय में, एक मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना वो बात शुरू नहीं होगी। समस्या बड़ी है, यानी सबसे बड़ी है, उसमें कोई शंका नहीं। काम सबसे बड़ा है, एक मरण को मरण से छूटना नहीं है, अनंत मरण से छूटना है। इतना बड़ा काम है तो उस काम को सफलता से संपन्न करने के लिए हमारी तैयारी भी इतनी ही बड़ी होनी जरूरी है, क्योंकि ये प्रारंभ है। मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, मोक्ष क्या चीज है कि जिस सिद्धालय में शादी अनंत काल तक हम अनंत सुख अनंत ज्ञान के साथ रहते हैं, रह सकते हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट के पीछे हमें क्या भोग देना हमारी तैयारी है, किस चीज किस बात का भोग देने की हमारी तैयारी है। अभिप्राय का पलटना यहां से शुरू होता है। आज रात्रि को चर्चा लेंगे, उसमें उस विषय पर थोड़ी और बात करेंगे अभिप्राय के विषय में, लेकिन यहाँ संक्षेप में वो बात है कि जिसको जन्म मरण नहीं चाहिए उसको पूरा संसार नहीं चाहिए, पर उसको पूरा मोक्ष चाहिए। मुमुक्षु वो है कि जिसको इस बड़े काम की गंभीरता मालूम हो कि मैं कोई सामान्य काम करने को नहीं निकला, इस विश्व का सबसे बड़ा काम करने की जिम्मेवारी मैंने ली है, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस काम का, मेरी जिम्मेवारी है ये काम करने की, मेरे लिए तो मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो उतनी गंभीरता से जो उठता है तो अपना प्रयत्न एक ही कार्य के पीछे लगाएगा, अपनी शक्ति अपना पूरा उद्यम इसी के पीछे लगाएगा, एक मोक्ष के लिए। दूसरी छोटी मोटी समस्या में वो अपना उद्यम या अपना शक्ति का खर्च नहीं करेगा। एक शब्द पर यहाँ मार्क करना चाहिए, एक मोक्ष के लिए ही, इतना मोक्ष के लिए प्रयत्न करना ऐसा नहीं है, एक मोक्ष के लिए ही यत्न करना। तो यहाँ से अभिप्राय पूरा बदल जाता है कि मुझे एक ही काम करना है, संसार का कोई काम करना नहीं है, और कोई काम करने की मेरी जिम्मेवारी जो सांसारिक दृष्टिकोण से गिनी जाती है वो मेरे लिए आज से गौण है, चाहे हो चाहे नहीं भी हो। और संसार के जितने कार्य है ये अपने बस में नहीं है, दूसरी बात वो है कि अपने बस में नहीं है, और ये अपने बस में है, मोक्ष का यत्न करना ये अपने बस में है। और यही यत्न करने से जब सभी समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर कौन सी बात बाकी रही, फिर किसकी चिंता करनी है, ये सब बातें समझ में आती हैं। तब उस जीव को मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है, मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है, उतनी मजबूताई से। इस मजबूताई दिखाने के लिए 128 नंबर के पत्र में थोड़ा विस्तार से एक पैराग्राफ कृपालु देव ने लिख लिया है कि चाहे जैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रसंग हो, या मेरे पे कुछ भी आ पड़े, इतना भी दुख सहन करना हो, आदि व्याधि कितनी भी आ जाए, कितना भी उपसर्ग परिसर हो जाए, मुझे तो यही एक काम करना है। और जो आत्मा में से यही आवाज निकलती है, जो आत्मा में से यही आवाज निकलती है आत्मा पुकार करती है कि बस मुझे अब एक ही काम करना है, मैं मेरी सही सभी शक्ति इसी काम के पीछे लगा दूंगा और सब मेरे लिए गौण ही गौण है। तब ये मोक्ष जिसके लिए वो प्रयास करता है इसका शिलान्यास होता है, फाउंडेशन स्टोन यही निर्धार है। मोक्ष का नींव यहां से डलता है और उतना मजबूत है कि फिर मुमुक्षु किसी भी प्रकार की समस्या उसमें हिलता नहीं है। समस्या तो कहीं कैसी भी आ सकती है लेकिन इससे बड़ी तो कोई है ही नहीं। कोई भी आदमी, कोई भी जुम्मेवार आदमी, कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर काम करता है, जैसे कोई बैंक का चेयरमैन होता है, तो ये जिधर बैंक का चेयरमैन है तो उसकी जिम्मेवारी वो बराबर समझता है, वो छोटे मोटे काम के पीछे नहीं रह सकता। ये वो कारकुनी का क्लर्क का काम नहीं कर सकता, तो मैनेजर का काम भी नहीं करेगा, ऑफिसर का काम भी नहीं करेगा, तो फिर चपरासी का काम कहाँ से करेगा कि एक टेबल से कागज दूसरे टेबल पर ले जाना, वो कोई चेयरमैन का काम थोड़ी ना। सब बड़े काम के पीछे कोई जुम्मेवार पोस्ट में जुम्मेवार आदमी है तो उसको छोटा काम नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा ये हो जाता है कि अपने दिमाग में वो बात रहनी चाहिए, मैं एक ऐसा काम के लिए निकला हूँ कि जिसके लिए सारे संसार के मेरे जो काम है उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई इसका मूल्य नहीं है। इसका मूल्य अभिप्राय में से निकल जाता है, जब ये अभिप्राय में आता है तब ही मोक्ष की नींव डलती है और खरी मुमुक्षुता में वो मोक्ष के लिए ही यत्न करेगा। जैसे मोक्ष है वो पूर्ण शुद्धि है और अनेक प्रकार के जो दोष है वो अशुद्धि है। दोष निकालने की भी एक पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसके भी नियम होते हैं। कल चर्चा चली थी थोड़ी रात को कि सबसे बड़ा दोष कौन है, दर्शन मोह का है, और छोटे मोटे दोष के प्रति हमको नहीं देखना है, यानी गौण करना है अभी। जबकि पूर्ण शुद्धि में एक दोष का भी कभी अभिप्राय या पक्षपात नहीं होता है और नहीं होना भी चाहिए। जब अभिप्राय मोक्ष का हो गया तो पॉलिसी के हिसाब से बड़ा दोष को निकालना है लेकिन अभिप्राय में तो दोष का एक कण भी न हम करना चाहेंगे, न कराना चाहेंगे, न हो तो उसका हमें अनुमोदना होनी चाहिए। उस तरह से एक पूरी गुण दोष की जो दृष्टि है वो अभिप्राय के दौरान स्वच्छ होती है, स्पष्ट होती है और गुण दोष के विषय में हमारी जो मति है, बुद्धि है, वो तुलनात्मक हो जाती है, तो अच्छी तरह उसका तोलन कर सकता है। क्योंकि हमें पूर्ण शुद्धि चाहिए, यही हमारी उपादेयता हो गई। इस कारण से दोष से हमारा नुकसान है, गुण से हमारा लाभ है, पर लाभ नुकसान यही हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन के विषय में ये मुमुक्षुता का प्रारंभ होते ही हमारी दृष्टि बहुत पैनी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है और तीक्ष्ण भी हो जाती है, तिखास भी आती है। इसलिए मोक्ष के प्रयत्न के विषय में ये सब परिणाम चालू हो जाते हैं। उदासीनता के साथ साथ अपना प्रयोजन के विषय में यानी गुणदोष के विषय में हमारी दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जानी चाहिए और प्रयोजन की मुख्यता भी बहुत आ जाएगी। मुमुक्षुता का ऊपर ऊपर का जो स्तर है, फिर इसके बाद जो ऊपर ऊपर का जो स्तर है उसका आधार यही एक प्रयोजन की दृष्टि ही है। जिसको अपना प्रयोजन मुख्य रहा उस मुमुक्षु का मुमुक्षुता का विकास ज्ञान दशा की ओर बहुत तेजी से होने लगेगा और उसमें जितनी क्षति रही उतनी देरी होगी। इसलिए हमारे जो मोक्ष की अभिलाषा है इसके साथ हमारे प्रयोजन की दृष्टि कितनी कार्य कर रही है वो बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए। इसी पर हमारा विकास का आधार है, हमारा जो डेवलपमेंट होने वाला है तो उसी मुद्दे पर होगा। और इसी कारण से मुमुक्षु आगे के स्टेज में प्रवेश करता है, जो यहाँ पत्र में भी कहेंगे कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण क्या है, लक्षण से बात किया है कि अपना दोष देखने में अपक्षपातता है। दोष अपना अपक्षपात रूप से देखना, देखना उतना ही नहीं, अपक्षपात रूप से देखना एक स्वलक्षी परिणमन का लक्षण है। तो जिसको एक मोक्ष के लिए प्रयास है, छूटना ही है संसार से, जैसे कैसे भी छूटना है, किसी कीमत पे छूटना है, इतनी जिसकी तैयारी हो गई उनका अपने दोषों का अवलोकन चालू हो जाएगा और अपक्षपात रूप से अपना दोष वो देखेगा। पहले ऐसा नहीं हो रहा था पर अब ऐसा होने लगा, इसका मुख्य कारण वो है कि पहले परलक्षीपना था तो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति भी परलक्षीपने से ही चलती थी जिसका फल संसार है, और एक स्वलक्षीपना उत्पन्न हुआ तो शुरुआत यहाँ से हुई कि हम हमारे परिणामों को देखने लगे, उसमें हमारे जो दोष है वो अपक्षपात रूप से देखने लगे। पत्र में तो थोड़ी दूसरी बात लिखी है, वो अपने मतलब की नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन लिखा है कि ये मुमुक्षुता है, मोक्ष के लिए प्रयास करना वो मुमुक्षुता है, और तीव्र मुमुक्षुता वो है कि जो अनन्य प्रेम से मोक्ष के मार्ग में प्रतिक्षण प्रवृत्ति करता है ज्ञान दशा में। तीव्र मुमुक्षुता मैंने ज्ञान दशा, वो है कि अनन्य प्रेम से मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष के इलाज में प्रतिक्षण की प्रवृत्ति करता है, प्रतिक्षण जागृति में रहता है और प्रवृत्ति करता है। लेकिन ऐसी तीव्र मुमुक्षुता के विषय में मुझे कुछ लिखना नहीं है, उतनी बात बीच में लिखी है उसको ओवरटेक करके अपने विषय को चालू रखा है कि यहाँ तो मुमुक्षुता के विषय में हमको विचार करना है, क्योंकि वर्तमान में हम मुमुक्षु हैं और हमारा प्रयोजन भी यही विषयक है। मोक्ष मार्ग में हम आए नहीं, इसलिए मोक्ष मार्ग की चर्चा हमारे प्रयोजन की फिलहाल नहीं है। तो कहते हैं कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण यह है कि अपने दोष देखने में अपक्षपातता यह है, इतना शब्द पड़ा है। अब दोष देखने में क्या हुआ, जागृति आ गई, स्वलक्षीपना के कारण से एक जागृति आई जो पहले नहीं थी। पहले भी दोष के विषय में कभी कभी विचार तो चलता था, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र की प्रवृत्ति थी और धार्मिक क्षेत्र में गुण दोष की चर्चा तो थोड़ी बहुत हर जगह होती ही है जी। इसलिए दोष के विषय में, गुण दोष के विषय में कुछ ध्यान नहीं गया या विचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। विचार हुआ हो, थोड़ा हुआ हो या बहुत हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमने दोष को देखे नहीं। विचार होना एक बात है, दोष को देखना बिल्कुल दूसरी बात है। जब दोषों का विचार आता है, अपने दोषों का, बात तो अपने दोषों की चलती है, अपने दोषों का भी विचार आता है, तब ये दोष हो जाता है, बाद में आता है। इसलिए जो दोष हो गया, वो दोष जो हो गया सो हो गया, उसमें हम क्या फेरफार कर सकते हैं। और जो नए दोष अभी उत्पन्न होंगे, उनका हमको पता नहीं है कि कब होंगे, कैसा होगा, किस किस प्रकार का दोष होगा और कब होगा, वो तो हम जानते नहीं। जो भूतकाल में हो गए उसमें हम कुछ कर सकते नहीं, जो भविष्य में होने वाले हैं उसमें भी हम कुछ कर सकते नहीं। एक परिस्थिति है, फैक्ट है। अब जो परिस्थिति है वो तो वो है कि जो दोष वर्तमान में हो, अगर कुछ हम कर सकते हैं तो वर्तमान में इसमें कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो दोष व्यतीत हो गए उस विषय में हमारी कोई चलने वाली नहीं है, वो नुकसान हो गया, वो नुकसान हो ही गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो डन अंडन नहीं हो सकता। अब वर्तमान में जो दोष चालू है उस पर अगर हमारी जागृति है तो उसमें अवश्य इस दोष की जड़ का काटने का उपाय चालू हो जाता है। यानी दोष की ताकत टूटती है। सबसे बड़ा दोष दर्शन मोह का है, दोहराता हूं इस बात को, और दर्शन मोह यहां कमजोर होता जाता है। चारित्र मोह भी कमजोर होता जाता है, और ज्ञान में जो अनिर्मलता के कारण से, ज्ञान की मलिनता के कारण से, मति की मलिनता के कारण से जो भी अपराध होता था, वो दोष को देखने के दृष्टिकोण से ज्ञान में निर्मलता आती है, मति निर्मल होने लगती है। ऐसे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीनों ही जो प्रमुख गुण है मोक्ष मार्ग के, उसमें सुधार मुमुक्षु की भूमिका में चालू होता है। तो ये एक प्रयोगात्मक कार्य पद्धति यानी विधि यहां से चालू होती है। जब तक ये प्रयोग की विधि चालू नहीं होती है, मुमुक्षु कितना भी शास्त्र पढ़े वो संज्ञा में रह जाएगा। शास्त्र के अनुसार समझ हो तो भी वो संज्ञा है। जैसे हम दृष्टांत ले लें कि समय सार की 11वीं गाथा है, आचार्य श्री उसमें वही कहना चाहते हैं कि भूयत्थम असिदो खलु समादिट्ठी हवरी जीवो, भूतार्थ को आश्रय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये सूत्र सिद्धांत रखा है वहां सम्यक दर्शन होने के लिए, तो वो बात समझ में आ सके ऐसी है मुमुक्षु को कि भूतार्थ मैंने अपना जो ध्रुव स्वरूप है, मूल स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य धातु जीव तत्व है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला तत्व है, सत्व है, जिसको परम तत्व कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, उसका आश्रय करने से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। समझ साफ है फिर भी बिना प्रयोग ओघ संज्ञा वाली है। आश्रय तो परिणमन का फैक्टर है, प्रयोग वाले को पता चलता है कि पराश्रय क्या चीज है और स्वाश्रय क्या चीज है, ये प्रयोग का विषय है। तो वहां सूत्र में असिदो आश्रय शब्द आया है, वो प्रयोग को सूचित करता है। अब हम थिंकिंग लाइन में गए हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल साइड में नहीं आए हैं, तो आश्रय का शब्दार्थ जानेंगे, भावार्थ जानेंगे, नयार्थ जानेंगे कि निश्चय नहीं की बात चल रही है, और मतार्थ जानेंगे कि जैन मत में वो सम्यक दर्शन की बात है, अन्य मत में ऐसी बात नहीं है। तो शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ, और इस आगम में वो बात लिखे वो आगमार्थ बोलते हैं, सब जानते हुए भी इसके परमार्थ को नहीं जानेंगे। परमार्थ क्या होता है कि आश्रय होना वही परमार्थ है, और आश्रय परिणमन में होता है, परिणमन तो अनुभव की चीज है। चलते हुए परिणमन को अगर हम नहीं समझते हैं कि पराश्रय कहाँ होता है, और पक्षपात रूप से हमें हमारा दोष देखना है कि हमारा आश्रय कहाँ हो रहा है, हम किसका आश्रय करते हैं, आश्रय माने क्या करते हैं, आश्रय करते हैं माने क्या करते हैं, ये बात हमारा अवलोकन बिना हमारी समझ में नहीं आता। तो वो जो शब्दार्थ भावार्थ वगैरह समझ में आया सब बेकार गया, क्योंकि खाने की चीज खाने से ही पता चलता है कैसी बनी है, देखने से सुनने से पता नहीं चलता है। वैसे आश्रय की चीज आश्रय का अनुभव को देखने से पता चलेगा कि गलत आश्रय हो रहा है या सही हो रहा है। तो आगम में जो प्रयोग की चीज आती है उसको हम शब्दार्थ या भावार्थ की सीमा में रख देते हैं, रख लेते हैं, और प्रयोग में नहीं जाते तो हम कहने वाले के अभिप्राय को नहीं समझे, या जो कहने में उसका रहस्य छिपा हुआ है उसको नहीं समझे, कहने में जो परमार्थ रहा है उसको नहीं समझे। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ें, और समय सार तो गंभीर शास्त्र हैं, इसलिए गंभीर शास्त्र को जब हम पढ़ें तब हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस बात प्रयोग की, किस प्रयोग की ये बात चल रही है, यानी जो बात चल रही है हमारी समझ में आती है उसका प्रयोग क्या है, ये क्वेश्चन हमको उसी वक्त उठना चाहिए। तो जो बात हमारी बुद्धि सम्मत करती है, हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, तो उसका प्रयोग क्या है, इसका प्रैक्टिकल साइड क्या है, वो बात हमको हमारी जिज्ञासा में आ जानी चाहिए। अगर वो बात नहीं आएगी तो हमारी नजर परलक्षीपने में इस तरह से रहेगी कि देखो कहीं लोगों को वो बात समझ में नहीं आती है, हमें समझ में आ गई, दूसरे को नहीं बैठती है, हमको बैठ गई। लेकिन बैठ गई तो क्या किया आपने, अगर बात बैठी है तो किया क्या, बार बार पढ़ने से कोई आश्रय नहीं होता, यही गाथा को बार बार पढ़ने से रटने से कोई आश्रय तो नहीं होता, आश्रय तो आश्रय करने से होता है। तो जो अवलोकन करता है उनको सबसे पहले अपना दोष दिखने में आता है, तटस्थ भाव से, मध्यस्थ भाव से और पक्षपात रूप से, ये शर्त है इसका। और यह अवलोकन सच्ची मुमुक्षुता आए बिना होता नहीं, क्योंकि एक जागृति का विषय है, चलते हुए दोषों को देखना ये बिना जागृति नहीं होता, तो दोष चल जाएगा बाद में ही पता चलेगा, करें मुझे ये भाव कैसे हुआ, ये बात होगी और अभी तक वही हुआ है कि हमने हमारे दोस्त पर विचार तो बहुत किया है लेकिन चले जाने के बाद। तो उस तरह की जागृति सच्ची मुमुक्षुता का प्रारंभ, यानी मोक्ष के लिए जिसका प्रयास है वो यत्न में वो बात होती है। जैसे मुनिराज हमारे मुनिराज हैं तो इरिया समिति से चलते हैं, पांच समिति तीन गुप्ति होती है ना, पंचमावर्त पांच समिति तीन गुप्ति, पांच समिति में चलने में इरिया समिति है। इरिया समिति का मतलब क्या है कि एक एक कदम वो देख के चलते हैं, तो उसको नीचे देख के चलना पड़ता है। दो फायदा है उसमें कि एक तो इधर उधर देखेंगे नहीं तो इधर उधर की चीजें नजर आएगी नहीं, वो फायदा है उसमें, पर इधर उधर की चीज का चीज के साथ हमारा प्रयोजन भी नहीं है, हम क्यों देखें। और इधर उधर देखने से चंचलता होती है, वो चंचलता भी पैदा नहीं होगी, और नीचे देखने से जो कोई छोटे मोटे जीव जीवांत है, जानवर है, उसकी हिंसा नहीं होगी। पाले करुणा अंग, उसकी करुणता है, करुणा से चलते हैं कि कोई जीव की हिंसा नहीं हो। तो एक समिति में कितने पहलू है फायदे का, जैसे वो कदम कदम पर देखते हैं वैसे मुमुक्षु की चाल है वो अपना परिणाम है, वो तो हर हर परिणाम को देखेगा। क्यों कि वहां अपनी हिंसा का सवाल है, दोष में अपनी हिंसा होती है, दोष होते ही दुख होता है, दुख होते ही हमारा सुख जो प्राण है, आनंद जो प्राण है, ज्ञान जो प्राण है, उसकी हिंसा होती है। तो हमको जताना है, यही हमारी यत्न है। कदम कदम पर हम देखें कि हमारा दोष किस तरह से हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है। उतने लगातार जागृति रहना ये मामूली बात नहीं है, प्रयोग करके देख लेना कि उतने लगातार सतत रूप से जागृति रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उसी जीव को रहेगी जिसको एक मोक्ष के लिए ही प्रयास चलता हो, वरना कुछ दोष दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा और अवलोकन टूटता रहेगा, बार बार अवलोकन टूटता रहेगा। जब चलते हुए दोष का पता ही नहीं चलता है तो फिर मिटाने का कौन सा अवसर है, कौन सा प्रयोग है, कौन सा इलाज है इसका? कोई इलाज नहीं है इसका। जब दोष मिटाने का, अशुद्धि मिटाने का इलाज नहीं है तो शुद्धि होगी कहां से? हो ही नहीं सकती। तो ये सब बात यहां से प्रैक्टिकल साइड की शुरू होती है, शुरू से ही वो बात है। मोहाशक्ति के उलझन अकुलाहट वो भी परिणमन का विषय है, शब्दार्थ का विषय नहीं है, भावार्थ का विषय नहीं है। पर यत्न करना, मोक्ष के लिए ही यत्न करना, ऐसा एक इनिशिएटिव मूड हो जाना, परिणमन में ऐसा इनिशिएटिव भाव चलता रहना कि मुझे मोक्ष के लिए ही प्रयास करना है, कि इस प्रकार का निर्धार हुए बिना, लक्ष्य बांधे बिना, ध्येय को निश्चित किए बिना हो ही नहीं सकता। और तब से ही स्वलक्षीपना चालू होता है। ये पूर्णता का लक्ष्य हुए बिना, मोक्ष का लक्ष्य मैंने पूर्णता का लक्ष्य हुए बिना, पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य हुए बिना स्वलक्षीपना चालू नहीं होता है। और परलक्षीपने से तो कुछ भी कर लो ना, अंग पूर्व का स्वाध्याय कर लो या दीक्षा लेकर के पंच महाव्रत धारण कर लो, इसका फल संसार है, मोक्ष नहीं है। स्वलक्षीपने से मुमुक्षुता का प्रारंभ होते ही यथार्थ रूप से मोक्ष के प्रति परिणामों का गमन चालू होता है, क्योंकि गति चालू होती है। तो उसकी तैयारी भी इसलिए सतत जागृति रहती है कि इतना महान कार्य के लिए मुझे अपने आप को संभालना है, मेरा इतना बड़ा ध्येय है, इसके लिए मैं निकला हूँ, तो मुझे पूरी सावधानी से अपना काम करना है। पूर्व तैयारी एक अनोखी अनूठी पूर्व तैयारी हो जाती है। जैसे बड़े काम के पीछे तैयारियां भी बड़ी होती है ना, बड़े काम की तैयारियां भी बड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलता है तो जिस इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो, कितना, 1-2 करोड़ का नहीं, 10,000-50,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसकी पूर्व तैयारी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। और वो आदमी फालतू काम के लिए कुछ भी रह सकता है क्या? उसके कुटुंब के कार्य, उसके समाज के कार्य, उसके शरीर के कार्य सब गौण हो जाते हैं। आराम भी पूरा नहीं कर सकता, रात्रि को 2 बजे भी अलाव अलाव करना पड़ता है। तो पंकज भाई बात करते थे कि आदमी को सोनी वाला बात है ना, सोनी कॉरपोरेशन, विश्व के सभी देशों में इसका ऑफिस है। तो उसने, उस चेयरमैन ने अपना ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी थी, उसमें वो लिखा कि मेरे तो ऑफिसें इतनी चलती है कि जहाँ रात होती है वहाँ तो मैं सोता हूँ, लेकिन और मेरी ऑफिस चलती है वहाँ तो दिन होता है। वो लोग तो दिन में बात करेंगे मेरे से, जहाँ मेरी रात है वहाँ दूसरे ऑफिस वाला का दिन है, तो मेरे को तो रात को भी बात करनी पड़ती है। आराम गौण हो गया कि नहीं हो गया? हम तो आपको कहे कि सुबह 4 बजे सत्संग करना है, नींद आती है, हम तो थके हो गए, हम तो नींद में है, हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन जिसको बड़ा काम करना है उसको नींद को भी गौण करनी पड़ती है, खाने का गौण करना पड़ता है, शरीर को गौण करना पड़ता है, कुटुंब को गौण करना पड़ता है, समाज को गौण करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और सब लोग समझते हैं कि भाई इतना बड़ा काम लेकर के बैठा है तो उसको समय कहाँ है अपने लिए बात करने का, छोटी मोटी बात है निपटा दो और से, कोई बड़ी बात हो तो उनके पास बात करेंगे, वरना उनके पास तो समय है ही नहीं। ऐसा हमारा हो जाना चाहिए कि हमारे पास दूसरे काम के लिए समय नहीं है। इतनी टॉप प्रायोरिटी में आए अभिप्राय में तो आ जाना चाहिए, तभी ये काम का प्रारंभ होता है और तभी सतत अवलोकन चलता है, वरना अवलोकन नहीं चलेगा। पक्षपातकता के कारण से, स्वलक्षीपना के कारण से स्वच्छंद का नाश होता है। क्या होता है? स्वच्छंद का नाश होता है। दर्शन मोह के साथ जीव का अहित करने वाला एक सबसे बड़ा दोष है, जिसको महादोष कह सकते हैं, वो स्वच्छंद है। स्वच्छंद में जीव क्या करता है कि परिणाम का कंट्रोल उसका छूट जाता है, अपने दोषित परिणाम का कंट्रोल छूट जाता है। एक तो इसका लक्षण वो है, दूसरा वो अपने विचार के अनुसार, अपने अभिप्राय के अनुसार चलेगा, ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार नहीं चलेगा। धर्म साधन करेगा तो भी अपने अभिप्राय के अनुसार करेगा कि मुझे तो त्याग सबसे अच्छा लगता है तो मैं त्याग करूँ, मुझे ध्यान सबसे बढ़िया लगता है तो मैं ध्यान करने को बैठ जाऊँ, और मुझे शास्त्र पढ़ना वो सबसे बढ़िया लगता है तो मैं शास्त्र पढ़ूँ, और अच्छे से अच्छे मान शास्त्र पढ़ना सबसे अच्छा है तो मान शास्त्र को पढ़ूँ। मूल आगम को पढ़ना चाहिए तो मूल आगम को पढ़ूँ, और किसी को भक्ति अच्छी लगती है तो भक्ति में लगे रहते हैं, किसी को दान सबसे बढ़िया लगता है तो दान देने में लग जाता है। ऐसे जिसको जो रुचि होती है और जिसको जो परिस्थिति होती है तो ज्ञानी की आज्ञा अनुसार चलने के बजाय अपनी मति के अनुसार चलने लग जाता है। ये भी स्वच्छंद का कारण है और हमारे जीव ने अभी तक स्वच्छंद ही किया है और कुछ नहीं किया। धर्म साधन किया है यानी कि अभिप्राय से एक बार भी नहीं किया। संप्रदाय के लोगों की दृष्टि के अभिप्राय से किया है तो लोग क्या कहेंगे, बस उसी अनुसार करो। इस तरह से धर्म साधन नहीं रहा, एक लोक संज्ञा और ओक संज्ञा के सिवा उसमें कुछ नहीं था। तो उसका नाश करना बहुत जरूरी है, स्वच्छंद का नाश करना बहुत जरूरी है। स्वच्छंद के कारण से जीव को शास्त्र वचन में भी शंका पैदा हो जाती है, यानी के वचनों में भी शंका पैदा हो जाती है, या परस्पर विरुद्धता मालूम पड़ती है, कई प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के दोष स्वच्छंद के कारण से पैदा होने लग जाते हैं। ये तो एक बड़ा प्रकरण है लिखने जैसा स्वच्छंद का, तो क्या क्या होता है उसको, तो प्रयोग सिद्धि में लिया है, थोड़ा विस्तार तो किया है, संक्षिप्त में थोड़ी बात तो लिखी है। भाई में कुछ बहनों में बीस नंबर का पेज है और 32 नंबर का पॉइंट है उसमें, 20 नंबर के पेज में 32 नंबर का पॉइंट है। सबसे ज्यादा दर्शन मोह को मैंने मिथ्यात्व को तीव्र करने वाला महादोष स्वच्छंद है, अतः उसको अच्छी तरह समझना आवश्यक है। इस विषय की श्रीमद् जी के गाथा का भी 15 गाथा आत्मसिद्धि किया है, उसका भी उद्धरण किया है कि रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, सम्यक दर्शन नहीं लिया, स्वच्छंद को रोके तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन तो बीच में आ जाएगा, अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अगर स्वच्छंद को रोका जाए तो। पायमा एम अनंत छे, अनंत जीव इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त किया है। बाक्यू जिन निर्दोष, निर्दोष जिनेन्द्र परमात्मा ने वो बात कही है, भगवान के नाम से वो बात कह दी। ऐसे स्वच्छंद का सद्भाव जो चिन्ह दिया है वो नीचे सभी पॉइंट लिया है, चिन्ह वाले स्वच्छंद का सद्भाव सूचक है और स्वच्छंद का अभाव, उसी प्रकार का स्वच्छंद का अभाव कैसे हो वो उस चिन्ह से, उस साइन से बताया है, दर्शाने के कितने भाव, स्वच्छंद वाले भाव दर्शाने के लिए चिन्ह दिया है, स्वच्छंद के अभाव दर्शाने के लिए ऐसा चिन्ह दिया है, बिंदी दिया है, उसका जो विस्तार है वो विस्तार निम्न प्रकार है। ऐसा करके लिखा है कि कैसे कैसे स्वच्छंद में दोष होता है और दोष कैसे मिटता है। जैसे कि पहली बात लिया है, शास्त्र संगत क्षोभम, यानी शास्त्र में जो बात कही है ऐसा ही हमारे क्षोभम में समझ में आए, या हमारे ज्ञान के अपराध से विसंगत समझ में आए, कहना कुछ चाहता है हम समझते हैं कुछ और, ऐसे परिणामों में चाहे समझ सही हो या गलत हो, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा भाव रह जाना और उस विषय में जिज्ञासा का अभाव रहना, ये इस विषय का स्वच्छंद है। इस विषय को स्वच्छंद है, आप कहेंगे कि जो बात समझ में आई उसकी जिज्ञासा कैसे रहेगी, कि जो बात समझ में आई वो बौद्धिक स्तर से समझ में आई है, उसका प्रैक्टिकल साइड क्या है, वो तो जिज्ञासा का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। पर बौद्धिक स्तर से हम समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो भाव आ जाता है और स्वच्छंद चालू हो जाता है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते स्वच्छंद चालू हो जाता है। ये बात बनती है स्वच्छंद के कारण। तो मुमुक्षु को ऐसे स्वच्छंद का अभाव कैसे होता है, समस्या भी दिया है स्वच्छंद की और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया है, समाधान भी दिया है, वो उस प्रकार है कि ज्ञान का क्षोभम विशेष होने पर, शास्त्र के अनुकूल समझ होने पर भी अपूर्व दशा, निरावरण दशा प्रकट नहीं हुई मेरी, तो उसी समझ से मेरी निरावरण दशा अपूर्व दशा कैसे प्रकट हो, इसकी जिज्ञासा और इसका सभान पड़ा रहना, कि जिस सभान पड़ा रहने से मैं समझता हूँ ऐसा अहम भाव अहंकार हुए ही नहीं, वरना ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, वो अहंकार को कैसे मिटाओगे, वो बड़ा स्वच्छंद है, महादोष है। तो इस तरह से अपना अपूर्वपणा अपूर्व दशा निरावरण दशा का प्रकट होने की शुरुआत नहीं हुई है, हमारी समझ किस काम की, समझ करके हमने क्या कर लिया, ऐसा साथ साथ रहना चाहिए। इस तरह से पूरा प्रकरण लिखा है इसमें, अरे चार पांच पेज में लिखा है, पांच पेज में लिखा है स्वच्छंद का प्रकरण, अनेक प्रकार के स्वच्छंद के भेद लिए हैं और उनका समाधान भी दिया है पांच पेज में। तो कल थोड़ा उस पर चलाएंगे, अभी तो समय पूरा हो गया है, कल इस विषय में थोड़ा और चलाएंगे। जिसके पास प्रेरण सिद्धि है वो रख ले, मैं यहाँ से रख लेना।